ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो हिंदी में बोलूं अंग्रेजी में बोलूं? आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, सो हिंदी में अच्छा होगा। चतुर्भुज आज मिठाई खाए हो, आवाज आ रही है। तो पढ़ेंगे भागवत महापुराण से छठा स्कंध अध्याय 8, नारायण कवच का जिसमें वर्णन है, और श्लोक संख्या 20। माम केशवः गदया प्रातः अव्यात् गोविन्द आसंगवम् अत्तवेणु नारायणः प्राह उदात शक्ति मध्यम दिने विष्णु अरिंद्रपाणी। माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आसंगमदात वेणु नारायण प्राण उदात शक्ति मध्यम दिने विष्णु अरिंद्र पाणी। माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आसंगमात्तवेणु नारायण प्राण उदात शक्ति मध्य दिने विष्णु अरिंद्र पाणी। माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आसंगमात वेणु नारायण प्राण उदात शक्ति मध्यम दिने विष्णु अरिंद्र पाणी। माता जी लोग, माम मुझको केशव भगवान केशव गदया अपनी गदा से प्रातः काल अव्यात रक्षा करें। गोविंद भगवान गोविंद आसंगवम दिन के चढ़े हुए समय में अत्तबेणु अपनी बांसुरी लेकर के नारायण चतुर्भुज भगवान नारायण प्राण दोपहर के पूर्व उदात शक्ति विभिन्न प्रकार के शक्तियों को बस में रखने वाले मध्यम दिने दोपहर में विष्णु भगवान विष्णु अरिंद्रपाणी शत्रुओं को मारने के लिए हाथ में चक्र धारण किए। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान केशव दिन के पहले भाग में प्रातः में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे भाग में दिन चढ़े अपनी बांसुरी से मेरी रक्षा करें। सर्वशक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे भाग दोपहर के पूर्व में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे भाग यानी दोपहर में मेरी रक्षा करें। तात्पर्य वैदिक ज्योतिष विज्ञान के अनुसार दिन तथा रात को 12-12 घंटों में विभाजित न करके तीन घटिकाओं प्रत्येक 24 मिनट की में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक दिन तथा रात 6 समान भागों में बटी होती है, जिनमें से प्रत्येक भाग 5 घटिका का होता है। दिन तथा रात के इस विभिन्न विभागों में से प्रत्येक में भगवान को भिन्न भिन्न नामों से रक्षा के लिए संबोधित किया जा सकता है। मथुरा नामक पवित्र स्थान के स्वामी भगवान केशव दिन के प्रथम भाग में तथा वृंदावन के अधीक्षक गोविंद दिन के दूसरे भाग में के स्वामी हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। आज मुझे क्लास देना था, असीम प्रभु कल कहे थे, तो मैं सोचा कि आज पढ़ लूंगा कुछ। तो सुबह उन्होंने पूछा कि महात्मा प्रभु आज हैं, आज 9 बजे के जाने वाले हैं, तो क्या वे क्लास दे सकते हैं? मैं कहा जरूर, महात्मा प्रभु सीनियर हैं, जरूर क्लास दे सकते हैं। तो गुरुवार को मुझे क्लास देना था हिंदी में, राइट? तो दिन चेंज कर लेते हैं। एनीवे, तो लास्ट मोमेंट में असीम प्रभु कहे तो ठीक है। भागवत महापुराण का बहुत ही सुमधुर सुंदर, एक एक श्लोक सुंदर हैं, सुमधुर हैं, लेकिन ये बड़ा ही रोचक अध्याय है जिसमें नारायण कवच का वर्णन किया गया है। मैं यहां तक पहुंचने के लिए शुरू से लूंगा, ठीक है ना, ताकि मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। हम लोगों को रक्षा की आवश्यकता है। इस संसार में सब जगह विपत्तियां हैं, जैसा कि भागवतम में वर्णन किया गया है। समाश्रितो जे पदपल्लवम प्लवम महत्पदं पुञ्जसो मुरारे भवाम्बुदीवस्य परं पदं 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 जाद्विपदं न तेषाम्। जो भगवान नारायण का कृष्ण का जो शरण ग्रहण कर लिया है समाश्रित ते पद पल्लवम प्लवम, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास बिंदास, कोई चिंता नहीं है। जो कृष्ण का शरण ले लिया है उसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो कृष्ण का शरण नहीं लिया है उसके लिए पदम पदम जत विपदम नति साम, कोई एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जहां पर विपत्ति न हो, पग पग में विपत्ति है। हम लोग कृष्ण का शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग शरण ले नहीं चुके हैं, हम लोगों को अभी दृढ़ निष्ठा नहीं हुई है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साधु शास्त्र गुरु के वचन में निष्ठा हो और उसका यथावत पालन करें तो हमें निष्ठा उत्पन्न होता है। कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, अवश्य राखेबे कृष्ण विश्वास पालन, इस विश्वास को हमें पालन करना चाहिए कि कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। देखिए यह बात विश्वरूप जी इंद्र को बता रहे हैं। इंद्र सेमी डिवोटी हैं, हम लोग तो सेमी डिवोटी भी नहीं हैं, हम लोग डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम इंद्र भगवान का आज्ञा पालन करते हैं इसलिए सेमी डिवोटी हैं, और भगवान उनका रक्षा करने के लिए आते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे, भगवान आते हैं जब इंद्र व्याकुल हो जाते हैं अपने शत्रुओं से तब उनका रक्षा करने के लिए। यहां पर विश्वरूप जी इंद्र को एक कवच दिए हैं, कवच रक्षा का विषय है। जैसे लड़ाई के मैदान में जब लड़ाई करने जाते हैं तो कवच पहन कर जाते हैं, सील पूरा लोहे का बना होता है। आजकल के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कवच पहनते हैं, बुलेट प्रूफ कवच है, कोई बुलेट मारे तो लगे नहीं। एक बार मैं चेन्नई में था, अभी ओपनिंग के समय है, तो मैं कह रहा था कि जयललिता इतना मोटी हैं, उनके घुटना में दर्द नहीं होता हुआ क्या? तो सुमित कृष्ण प्रभु कहते हैं कि नहीं, वो मोटी नहीं है उतना, लेकिन वो कवच पानी है, थोड़ा स्टील पानी है, इसलिए थोड़ा मोटी लगती है। तो ये पॉलिटिशियन लोग पहन लेते हैं, आजकल तो बहुत पतला हो गया है कपड़ा जैसा, लेकिन कवच है रक्षा करने के लिए शरीर का। लेकिन यदि कृष्ण मारना चाहें तो कोई कवच काम नहीं करेगा। इसीलिए भक्त लोग कृष्ण पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। एनीवे ये वैदिक मंत्र है, नारायण कवच बड़ा ही फेमस है और आज भी इसका प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शुद्ध भाव से नारायण कवच का पाठ किया जाए तो इसका आज भी प्रभाव है। कोई तहे दिल से पाठ करे, जब निडी के रूप में करे तो समझ सकता है। तो चलिए विश्वरूप जी इंद्र को नारायण कवच का मंत्र दे रहे हैं। ओम हरि विदध्याम मम सर्व रक्षाम नास्तंग्री पद्मा पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमाचिदगे सुचाप पाशां ददानो अष्ट गुणो अष्ट बाहु। भगवान हरि का ध्यान करते हैं कि वे भगवान श्री हरि विदध्यात मम सर्व रक्षा, सब प्रकार से मेरा रक्षा प्रदान करें। यह अच्छा तरीका है भगवान के शरण में जाएं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी टोरी तेरे हाथ डाल दो कृष्ण के पास, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। सर्व रक्षा, सब प्रकार से रक्षा, दसों दिशाओं में चार दिशाएं, चार कोने और ऊपर नीचे, सर्वरक्षा मतलब सब प्रकार से रक्षा, उसके बाद मानसिक शारीरिक बीमारियां हैं आदि व्याधि जो कुछ भी है सब प्रकार से रक्षा करे मृत्यु के अलावा। मृत्यु से भी कृष्ण रक्षा कर सकते हैं लेकिन मरना सबको है। सर्वरक्षा सब प्रकार से, कौन भगवान रक्षा करे? निराकार का यहां वर्णन नहीं किया गया है, यहां पर साकार भगवान का बात हो रहा है, यहां भगवान का बात हो रहा है। पहले वैदिक संस्कृति में भगवान का बात होता था, जो भी साधु महात्मा थे वे भगवान का बात करते थे और भगवान के विषय में यथावत बतलाते थे कि भगवान कौन हैं, कैसे देखने में लगते हैं, कहां निवास करते हैं, ये सब कुछ। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया गया, रूप गोस्वामी कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू बरगेण वा कल्पिता। महाप्रभु, मैं आराधना करता हूं उनका, आराध्यो भगवान, मैं उन भगवान का आराधना करता हूं जो कौन है? ब्रजेश तनय, नंद बाबा के सुपुत्र हैं। आराध्यो भगवान बड़े तद्धाम वृंदावनम, मथुरा निवास नहीं करते हैं, द्वारिका निवास नहीं करते हैं, वे वृंदावन में निवास करते हैं। और करते क्या हैं? ब्रजवधु बरगीण वा कल्पिता, ब्रजंगनाओं के साथ में लीला विहार करते हैं। और उन भगवान का प्रमाण क्या है? भागवतम। तो इस प्रकार से आचार्य लोग, साधु लोग पहले यथावत ज्ञान देते थे। आजकल मूर्ख लोग हैं जो लाल कपड़ा पहनकर घूमते रहते हैं, साधु का ढोंग रच कर करके, वो भगवान के विषय में जानते नहीं हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये साधु का धर्म नहीं है, साधु का धर्म भगवान के विषय में बताना, भगवान कौन है। लोगों में अंधविश्वास पैदा हो रहा है, किसी को भगवान मान करके पूजा करते हैं, क्योंकि साधु लोग मर गए हैं इस्कान के अलावा, कोई बताने वाला नहीं भगवान कौन है, किसी का पूजा करेंगे। लेकिन शास्त्र बिल्कुल क्लियर किया है कि किसका पूजा करें, कौन पूजनीय है। यहां पर रक्षा के लिए कहते हैं भगवान हरि, जो भक्तों के दुख को हरण करने वाले हैं, वे हरि हमारा सब प्रकार से रक्षा करें। हरि हैं कैसे? कहते न्यास्तांग्रि पद्म पदगिंद्र पृष्ठे, जो भगवान अपने चरण कमल को नस्त्यांग्रि रखे हुए हैं, अपने अंग्री अपने चरण कमल को किस पर? पदगिंद्र पृष्ठे, बैठे हुए भगवान नहीं, रक्षा करने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तो भगवान खड़े हैं, किस पर खड़े हैं? तो पक्षीराज गरुण के पीठ पर खड़े हैं, पतगेंद्र पृष्ठे हैं, गरुण के पीठ पर भगवान खड़े हैं। यह कितना एक एक बात सार गर्भित है। बैठ करके भगवान यहां पर, भगवान हरि, भगवान विष्णु कभी कभी से शय्या पर शयन करते हैं, लक्ष्मी पैर दबाती हैं, वो भी भगवान हैं। भगवान गरुण पर बैठकर आते हैं, वो भी भगवान हैं। लेकिन यहां पर विशेष भगवान का प्रार्थना किया गया है जो गरुण के पीठ पर खड़े हैं। सामान्य रूप से देखा जाता है कि भगवान के हाथ में चार आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। लेकिन यहां पर आठ भुजा वाले भगवान को कहा गया है दरारि चरम असि गदयाश्चाप पाशान दधानो अष्ट गुणो अष्ट बाहु। अष्ट सिद्धियों से युक्त आठ बाहों में आठ चीज लेकर के, दर मतलब शंख, शंख बजा करके भी भगवान भक्तों का रक्षा करते हैं। जैसे भगवान जब शंख बजाते हैं या शुद्ध भक्त जब शंख बजाते हैं, भक्त शंख बजाते हैं, तो शंख से अरि यानी दुश्मनों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। भगवत गीता में हम लोग प्रथम अध्याय में सुने हैं, पांचजन्य हसी केशव देवदत्त धनंजय, जब दुर्योधन के तरफ से पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो थोड़ा कुलाहल हुआ, लेकिन जब अर्जुन और कृष्ण शंख बजाए, हृदय विदारयन, उनका हार्ट अटैक हो गया। तो शंख भी काम करता है, हार्ट अटैक कर देता है। शुद्धता में बहुत बल है। हम लोग बेन का कथा सुने हैं कि वे साधु लोग ऋषि लोग केवल डांटे, उसका हार्ट अटैक हो गया, डांट से ही। प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता बल है। तो भगवान सब प्रकार से शुद्ध हैं, भगवान का शंख सब प्रकार से शुद्ध है। तो यह शंख भी एक आयुध है। कोई कहता था शंख मारता थोड़े है, मारता है, हार्ट अटैक कर देता है शंख, और वही भक्तों को उत्साह बढ़ाता है। तो शंख एक हाथ में, दूसरा अरि यानी सुदर्शन चक्र, भगवान के हाथ में चक्र है। सब जितने आयुध हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है, मुखिया जो है, वो है अरि यानी चक्र। पहले जाय श्री श्री गौरताय राधारस बिहारी सीताराम चरमान की जाय। सुदर्शन चक्र पहले चल देते हैं, हम लोग जानते हैं दुर्वासा मुनि का जब ये हो रहा था तो बिना पूछे चल दिए, उनको स्टैंडिंग ऑर्डर है सुदर्शन जी को डिसाइड करने का। अरि चर्म, भगवान ढाल भी लिए हुए हैं। कोई कह सकता भगवान को ढाल की जरूरत क्या है, जब असुर मान लो हिरण्यकश्यपु तलवार चलाया तो क्या नरसिंह भगवान वो ढाल से रोके, उनको ढाल की जरूरत क्या है। ये ढाल भी अस्त्र है, भगवान किसी को झापड़ मार देंगे मर जाएगा, तो ढाल तो बहुत दूर की बात है। वो धोबिया कथा जानते हैं आप लोग ना, भगवान ऐसे मार दिया गला कट गया उसका, मर गया गया गांव से, तो ढाल से धक्का दे देंगे, वो भी एक अस्त्र है ढाल। असी तलवार सब लोग जानते हैं, गदया कदा, इसु तीर, चाप धनुष, पाशान भगवान रस्सी भी लिए हैं, किसी को बंदी बंदी बनाना होगा बांधने बंधने के लिए भी काम करता है, एक हाथ में रस्सी भी है। दधान ग्रहण किए हैं, अष्ट गुणों अष्ट बाहू, आठ प्रकार के सिद्धियों से युक्त भगवान आठ बाहों में लेकर के पक्षीराज गरुण के पीठ पर खड़ा है रक्षा करने के लिए। अब रक्षा कहां कहां किया जाए, हिरण्यकश्यपु भी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी से कहा, जितना बुद्धि था उसके अनुसार, ऊपर न मरू, नीचे न मरू, दिन में न मरू, रात में न मरू, इत्यादि इत्यादि। ये नारायण कवच में भी वर्णन किया गया, कहते हैं जले सुमामृत छसम, जले सुमामृत छतुमस्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्, अस्थले सुमाया बटुबा मनोव्यात त्रिविक्रमाखे वतु विश्वरूप। जले सुमाम, कभी कभी नहाने जाते हैं गंगा जी में चाहे तालाब में नहाने जाते हैं, अरे और नहीं तो बाथरूम में भी नहाते तो है ना, नहाते तो कहीं पर है। जलेसु जो भी बहुवचन, जलेसु कोई जल स्थली हो, या पानी पीते हैं, कभी अटक गया पानी तो मर सकता है कोई, दूसरे नली में चला गया, तो जल में वो अपना स्थली नहीं है, निवास स्थली नहीं है, अस्थल मनुष्यों का निवास स्थली है, जल नहीं। तो जल में भी रक्षा चाहिए, नहा रहे हैं डूब जाएंगे, बाथरूम में है, पैर फिसल गया, हार्ट अटैक हो गया, मर जाएंगे। पानी पी रहे हैं ज्यादा, कहीं अटक गया नली में तो भी मर सकते हैं, सांस रुक जाएगा। तो जल भी मार सकता है। तो जले सुमाम रक्षति मत्स्य मूर्ति, मत्स्य भगवान, मत्स्य अवतार में जो आए थे वे मत्स्य मूर्ति भगवान हमारा जल में रक्षा करें। क्या क्या जल में तकलीफ होता है उसका भी बताया। यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात्, गरुण के पास से भगवान रक्षा करें। यदि समय से स्नान करने न जाए, आधे रात को कोई स्नान करने जाए, जैसे नंद बाबा एक बार चले गए थे तो वरुण अपने पास में बांध लिए थे। तो यादो गणेभ्यो, जल जंतुओं से, मगर, घड़ियाल, सार्क, बड़े बड़े मछलियां हैं, हैं? तो यादो गणेभ्यो, पानी में रहने वाले जितने भी जंतु हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। अरे छोटी मछली भी आप तैर रहे हो अकेले, छोटी मछली अगर नीचे से बूम कर दे तो हार्ट अटैक हो सकता है। अरे कौन आ गया नीचे से, डर लगता है ना, क्योंकि हमारा स्थल वो नहीं है। तो कहते हैं यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात्, मत्स्य मूर्ति भगवान जल में हमें जल जंतुओं से, वरुण के पास से, इन सब से हमारा रक्षा करें। स्थले सुमाया बटु बामनो व्यात, और स्थल पर कहते पदम पदम जत विपदम न तेषाम सहज विपत्तियां हैं। तो स्थल पर ठोकर लग गया, गिर करके मर जाएंगे, और नहीं हुआ था, कुछ भी हो सकता है, गन से कोई मारे, पिस्तौल से मारे, वो तो दूर रहा, कैसे भी स्थल भी सेफ नहीं है। तो स्थले सुमाया बटुबामनो अव्यात, भगवान बामन देव है, माया बटु, बामन देव को माया बटु कहा गया है, माया रूप धारण किए थे भगवान बामन देव। आप लोग कथा जानते हैं कि जब कश्यप और अदिति दोनों तपस्या किए तो भगवान आए और उन लोगों को सब बतलाने के बाद उनके सामने ही भगवान बामन का रूप धारण कर लिए। तो उन लोगों का आश्चर्य हो गया कि छोटा बच्चा क्या करेगा, बलि के पास तो शुक्राचार्य हैं, उनके पास बहुत अस्त्र शस्त्र है, बलि बहुत बलवान है, ये छोटा बालक क्या करेगा। लेकिन भगवान ने कहा कि माता पिताजी आप घबराओ मत, चिंता मत करो, आज के दिन बलि को कोई परास्त नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह ब्राह्मणों के द्वारा रक्षित है, ब्राह्मण के द्वारा रक्षित है, और लोहा लोहा को काटता है, तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण को काट सकता है। जब ये ब्राह्मण के प्रति अपराध बलि करेगा तब ही ये मर सकता है, नहीं तो कोई नहीं मार सकता है, इसलिए मैं ब्राह्मण के रूप में आ गया हूं, छोटा है। माया बटु, और भगवान अपने इस भाव को व्यक्त भी किए, बलि को प्रास्त करने का सब प्रकार से भगवान प्रास्त किए, लेकिन बलि भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाए थे, भगवान के चरणों में ध्यान को लगाए थे। अरे जो व्यक्ति स्कान के चरणों में ध्यान लगाता है, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप घूमकर चला आता है, स्कान में रहने से, स्कान का भगत बनने से, स्कान के चरण में रहेगा तो पूरे संसार का भ्रमण करेगा। ये बलि महाराज बामन देव के चरण में ध्यान किए थे, पूरे विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिए, जहां जहां उनका पैर गया सब देख रहे थे बलि, छोटे यही थे लेकिन सब कुछ देख रहे थे। जब भगवान ने कहा कि दो पग में तो सब नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूंगा, तो बलि ने कहा कि प्रभु आप समझते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अरे मेरा सिर तो है ना, धन से धनवान बड़ा होता है, तो बलि अपना सिर दे दिए और भगवान ने कहा कि बलि तुम जीता और मैं हारा, तुम्हें प्रास करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है? माया बटु धारण किया, मैं छलिया बना, छलयसी है ना, कैसे है, हां दशावतार में है ना, वामन को छलने के लिए, तो ही बात यहां पर आया है, माया बटु छलिया ब्राह्मण के रूप में भगवान जो हैं वामन देव, माया क्या क्या नाम यहां पर रखा गया है, वामन से भी काम हो सकता और कुछ हो सकता था, लेकिन माया बटु वे भगवान अस्थलेशु, यानी वे भगवान कहीं फिट हो जाएंगे, जहां जैसा तकलीफ होगा वहां फिट हो जाएंगे, इसलिए माया बटु वामनो अव्यात, वे भगवान वामन देव मेरा स्थल पर रक्षा करें। त्रिविक्रम खेव तु विश्वरूप, और प्लेन में चलते रहते हैं आजकल तो साधु महात्मा लोग भी है? पहले लोग पुष्पक विमान में चलते थे, तो खेवतु यानी आकाश में, खे मतलब आकाश, आकाश में चल रहे हैं, प्लेन क्रैश ना हो जाए, तो भगवान त्रिविक्रम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान त्रिविक्रम आप मेरा रक्षा करना, जो विराट रूप धारण किए हुए तीन पग में सब कुछ, वामन भगवान ही है लेकिन स्थल पर वामन रक्षा करें और आकाश में त्रिविक्रम। तो जल में याद रखना आप लोग आए, कभी कभी ध्यान कर लेना, नहाने आना तो भगवान को ध्यान कर लेना, मत्स्य मूर्ति को ध्यान कर लेना ताकि कोई तकलीफ ना होने पावे। स्थल पर चल रहे हैं भगवान वामन देव, कभी प्लेन में चढ़ना हुआ तो पहले त्रिविक्रम भगवान को प्रणाम कर लेना, तो इस प्रकार से ये रक्षा करेंगे। दुर्गेशु अवटी दुर्गेशु अटवियाज मुख आदिशु प्रभु पायान सिंहो असुरजुत्थ पारी विमुंचतो यस्य महाठास दिशो विनेन्दु पदयश्च गर्भा। ये पूरे श्लोक में भगवान नरसिंह देव का वर्णन किया गया है कि वे भगवान नरसिंह देव दुर्गेशु, दुर्गेशु का मतलब कोर्ट कचहरी ये भी हुआ, और दुर्गम स्थली अनजान जगह जहां कोई जान पहचान वाला नहीं हो, या जेल में चले गए हैं जेल में, दुर्ग जो दुर्गम स्थली है, आजकल हमारे लिए होगा कोर्ट कचहरी, कभी कोर्ट कचहरी में न जाना पड़े, तो वैसे स्थानों पर दुर्गम स्थानों पर या अटवी घने जंगल में खूंखार जगह पर, या आजिमुख आदिशु युद्धस्थली में, इन जगहों पर भगवान जो पाया से निकले हुए थे, स्तंभ से निकले हुए थे, असुरजुत्थ पारी, वे भगवान जो असुरों के अरि हैं, वे नरसिंह भगवान जब पाया से निकले और अट्ठास किए दसों दिशाओं में, ऐसा वह गुंजा कि असुर पत्नियों का जो गर्व था च्युत हो गया कर उनका अट्ठास से, तो वे नरसिंह भगवान हमें जंगल में, दुर्गम स्थानों में, कोर्ट कचहरी में, युद्ध स्थली में, या आजकल प्रचार करने जाते हैं, पुस्तक वितरण करने जाते हैं, ये पुस्तक वितरण भी जो है ये दुर्गम स्थली है, तो ऐसे स्थानों पर भगवान नरसिंह देव हमारा रक्षा करें। रक्षत स माध्वी यज्ञ कल्प स्वद्रंश योनि स्वद्रंश योनि तरोधरो वराह रामद्रिकूटे स्विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याभरताग्रजोस्मान। भगवान हमारा रक्षा करें, जैसे यहां कहा गया है कि जिनको यज्ञों के द्वारा प्रसन्न किया जाता है, यज्ञ पुरुष यज्ञ कल्प, वे भगवान हमारा रक्षा करें वराह देव, जब पृथ्वी पर चल रहे हैं या कभी भूकंप आ जाए ऐसे परिस्थितियों में या बाढ़ आ जाए तो ऐसे परिस्थितियों भगवान बराह रक्षा करें। राम यानी परशुराम जी, अद्री यानी जंगल में, कभी जंगल में जाना हुआ तो भगवान परशुराम हमारा रक्षा करें। और विप्रवाह से घर से बाहर निकल गए हैं, घर निकाले हो चाहे कहीं यात्रा में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो सौ लक्ष्मणों व्याद, अकेले नहीं लक्ष्मण के साथ में मेरी रक्षा करे। कौन? भरत अग्रजोस्मात्। भरत के अग्रज भगवान राम लक्ष्मण के साथ में वनवास में हमारा रक्षा करें, या विप्रवास या घर से जब बाहर चले गए हैं वैसे परिस्थिति में हमारा भगवान श्री राम रक्षा करें। अब जब धर्म का पालन करते हैं तो धर्म में विभिन्न प्रकार का प्रमाद होता है। जैसे भक्त लोग भजन करना शुरू करते हैं तो बाप मां बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये साधु बन गया, और विभिन्न प्रकार का टोना टोटका भी होता है। ऐसे ही भक्त लोग देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, तो टोना टोटका बहुत लोग कर देते हैं। तो उन टोना टोटका से रक्षा कौन करे? कहते हैं माम उग्र धर्म अखिला प्रमाद नारायण पातु नरश्चहासात दत्तस्व जोगात अथ जोगनाथ पायात गुणेश कपिल कर्म बंधात। कर्म बंधन से संसार में कर्म करते हैं, कर्म बंधन से भगवान कपिल देव हमारा रक्षा करें। और जोगियों के नाथ जोगेश्वर भगवान दत्तात्रेय हमारा बदनामी होने से नहीं, भगवान नारायण हमारा बदनामी होने से रक्षा करें। इस प्रकार से मिथ्या धर्मों के आवश्यक पालन तथा प्रमाद बस कर्तव्यच्युत होने से भगवान नारायण में रक्षा करें। नर रूप में भगवान मुझे वृथा गर्भ से बचाए। भक्ति योग के पालन में च्युत होने से जोगेश्वर दत्तात्रेय में रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी कपिल कर्मबंधन से मेरी रक्षा करें। जो ब्रह्मचारी रहना चाहता है उसको चाहिए सनत कुमारों से प्रार्थना करना। सनत कुमारो वतु कामदेव, कामदेव हम पर अटैक नहीं करने पावे। हे सनत कुमार, ये बल ब्रह्मचारी लोग हैं, आप लोग हमारा रक्षा करें। हय हयसिर सामाम पथि देव हेलनाथ। और रास्ते में जा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का मंदिर होगा। आजकल तो सब जगह हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, शिव जी का मंदिर बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवता लोग होते हैं, तो उन लोगों से भगवान हयग्रीव हमारा रक्षा करें। हय सिरसा माम पथि देव हेलनाथ। रास्ते में जा रहे हैं, फास्ट गाड़ी जा रही है, मंदिर प्रणाम नहीं किया या कोई अपराध हो गया, तो उस रास्ते में जो अपराध हुआ हो देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति, उसके लिए देव हेलना। देव शब्द भगवान के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देर इज ओनली वन गॉड, देर नो गॉड्स, देर ओनली गॉड, देर आर डेमी गॉड्स। देवता अनेक हैं लेकिन भगवान एक हैं। इसलिए कहा गया है देव हेलनाथ, देवता हेलनाथ नहीं कहा गया। देव हेलनाथ का मतलब होना चाहिए विष्णु। रास्ते में जा रहे हैं, विष्णु का मंदिर है, प्रणाम नहीं कर पाए, होना तो चाहिए कि वहां रुक करके भगवान को प्रणाम करें। भगवान और भगवान के प्रतिनिधि देव हैं। देव हेलनाथ देवर शिवरी पुरुषार्चरान पुरुष अर्चनांतात। यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, अर्चा विग्रह कर रहे हैं, और अर्चा विग्रह में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए कह रहे हैं कि देवर्षि नारद, जो नारद पंत्रात लिखे हैं, वे हमारा रक्षा करें। कुर्मो हरिर्माम निरयाद से सात, और कुर्मा अवतार भगवान हमें नरक में जाने से रक्षा करें। धनवंतरी भगवान पात अपत्यात द्वंद्वात भयादृशभो निर्जितात्मा। भगवान धनवंतरी हमारा कुछ भी खा लेते हैं, होटल में जाकर खाते हैं, यहां खाते हैं, कहते हैं अपच हो गया, फूड प्वाइजनिंग हो गया है। तो ये जो अपथ्या, जो खाने योग्य नहीं वस्तु है उसको खा लिया, जो प्रसाद नहीं था उसे खा लिया, अपच हो गया। तो वैसे परिस्थितियों में कहा गया कि भगवान धन्वंतरी हमारा रक्षा करें, जड़ी बूटी लेकर के रखते हैं अपने पॉकेट में, ले लो खा लो ठीक हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। तो ये धन्वंतरी भगवान हमारा रक्षा करें। द्वंदा भयादृशभो निर्जितात्मा, और जब हम दुविधा में पड़े हुए हैं कि मंगला आरती जाएं कि नहीं आएं, क्लास में जाएं कि नहीं जाएं, आज एकादशी करें कि नहीं करें, ये संसार दुविधा का संसार है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत, ये द्वंद्वात्मक संसार है। ऐसे द्वंद्वात्मक संसार में भगवान ऋषभ देव जो कि अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में किए थे, जितात्मा थे वे, भगवान ऋषभ देव हमारा ऐसे द्वंद्वों से रक्षा करें। जब भी मैं द्वंद्व में पड़े तो भगवान ऋषभ देव को याद करना चाहिए। जज्ञश्चलोका अवताजन अनंतात बलो गणात क्रोध वसाप इंद्र। अब कहते हैं कि यज्ञ में जो यज्ञ करते हैं या भजन करते हैं तो जस मिलता है, और जस से नाम की वृद्धि होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम बदनाम करने के पीछे पड़े रहते हैं, इसका नाम इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना बड़ा भगत कैसे बन गया, हमारे सामने ज्वाइन किया इतना बड़ा कैसे हो गया है? तो इस प्रकार से संसार में लगा रहता है, खींचाता नहीं पैर खींचने का है। तो वैसे लोका अपवाद यानी बदनामी से हमारा यज्ञ पुरुष भगवान हमारा रक्षा करें। बलो गणात क्रोध वसाप इंद्र, क्रोध वसात यानी जो क्रोध के बस में हमेशा रहते हैं अहिंद्र, वे भगवान शेषनाग हमारा रक्षा करें सर्पों से, सर्पों से वे रक्षा करें। अब कल श्लोक था, मुकुंद माधव प्रभु क्लास दिए थे, वो था द्वैपायनो भगवान प्रबोधात बुधस्तु पाषाण गणा प्रमादात कल्की कले कालोता प्रमातु धर्मावनायो रुकृतावतार। ये आज के दिन में बिल्कुल ये श्लोक सही है, आज के लिए बिल्कुल सही है। आज का जो वातावरण है इंडिया में, द्वैपायनो भगवान अप्रबोधात, अज्ञानता से भगवान व्यास देव हमारा रक्षा करें। भगवान व्यास देव आए थे ज्ञान देने के लिए, माया मुग्ध जीवेर नाई स्वतः ज्ञान जीवर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। भगवान कृष्ण के सत्ता वैसा अवतार हैं भगवान व्यास देव, इनका नाम है द्वैपायन, द्वीप आयन इति द्वैपायन, जो द्वीप पर आए थे। व्यास देव कथा आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से जब इनके पिता पराशर मुनि जा रहे थे और मत्स्य गंधा को देखे तो अट्रैक्टेड हो गए, कामदेव का प्रचंड बाण उन पर प्रहार किया, वो कांपने लगी मत्स्य गंधा और कहती है अरे दिन का समय है और गंगा जी में नौका चल रहा था, मैं अभी कुंवारी हूं, जो जो बात वो कही थी पराशर मुनि सब बात का पालन करते हुए कहे चिंता मत करो, दिन नहीं रहेगा रात हो जाएगा, व्यास देव अपने जोग से शक्ति से, सॉरी पराशर जी अपने शक्ति से, योग शक्ति से दिन को रात में टर्न कर दिए और नाव को एक टापू पर लगाए। आप जाओ गंगा जी में, जब गंगा जी में पानी आता है तो कभी इधर जाता है कभी इधर, बीच में टापू बन जाता है। वो टापू पर नौका खड़ा हुई और वहां पर व्यास देव का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण मतलब काले, दिन को रात बनाया गया था, वो काले थे, और द्वैपायन द्वीप आयन, जो द्वीप पर टापू पर जन्म लिए थे, तो इसलिए व्यासदेव को द्वैपायन कहा गया। द्वैपायनो भगवान अप्रबोधात, अज्ञानता से भगवान व्यासदेव जो ज्ञान देने के लिए आए थे वे हमारा रक्षा करें। आज सर्वत्र अज्ञानता है, लोग अज्ञानता में भगवान को जानते नहीं है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कहते हैं भगवान है ही नहीं, थोड़ा उससे कुछ बड़े लोग हैं कहते हैं हम सब लोग भगवान हैं, थोड़ा उससे ऊपर वाले हैं कहते हैं भगवान हैं ये प्रकृति ही भगवान है, थोड़ा ऊपर वाले हैं कहते हैं भगवान निराकार हैं। लेकिन भगवान को जानना, उसके लिए भक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्वतः, जैसा मैं हूं वैसा कोई जान सकता है तो मात्र भक्ति से। तो भक्ति देने के लिए ये वेद पुराण है, गीता भागवत भक्ति के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता इज मेंट फॉर डिवोशनल सर्विस, भक्ति देने के लिए। भगवान रास्ता बताए हैं कि कैसे कृष्ण को कोई जान सकता है, भक्ति के द्वारा, और गीता भक्ति का साधन है जिसको व्यासदेव ने दिया महाभारत में। तो आजकल आजकल गीता भागवत की बड़ी जरूरत है। अप्रबोधात, अज्ञानी लोग हो गए हैं, अज्ञानी तो हैं ही, कुछ लोग पाखंडी भी हो गए हैं, कहते भगवान है ही नहीं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, प्रभुपाद जी ऐसे दुष्टों को तारने के लिए आए थे। पाषंड, पाषंड मतलब पाप खंड इति पाखंड, इंद्र ने ही शुरू किया था पाखंड भी, जब महाराज पृथ्वी यज्ञ कर रहे थे तो उस पाखंड को, पाखंड से हमारा भगवान बुद्ध रक्षा करें। भगवान बुद्ध आए थे पाखंडियों का दिमाग ठीक करने के लिए, जो वेद पुराण के नाम पर पाखंड कर कर करके और इंद्रिय तृप्ति करते थे। कल्की कले काल काल मताल प्रतापू, और कल कली मतलब कलह, और झगड़ा और मारपीट से भगवान कल्की हमारा रक्षा करें। जो रक्षा के लिए आते हैं, धर्म औना औनाय, धर्म का स्थापना करने के भगवान आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। तो अब तक से तो जनरल बात यहां पर कहा गया है, अब अपना स्केड्यूल बता रहे हैं कैसे भगवान रक्षा करें। तो जैसा कि 12 प्रहर का दिन और 12 प्रहर का रात ही ना तय गया है, तीन घटका प्रत्येक छह भागों में, रात दिन ता रात छह भागों में, 12 प्रहर, छह पहर का रात और छह पहर का दिन, यदि देखा जाए तो 6 बजे से 6 बजे तक 12 घंटा हो गया। तो शाम को 6 बजे से 6 बजे सुबह एक प्रहर हुआ और दूसरा हुआ, ऐसे 12 से लिया जाता है, राइट, 12 से 12 ऐसे कुछ। तो एनीवे यहां पर जो है वही 12 से 12 का गणना इस श्लोक में है। कहते माम केशवो गदया प्रातरभ्य, भगवान केशव यानी 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। तो भगवान को ड्यूटी बांट दिया गया है, कौन भगवान कब रक्षा करेंगे। माम केशवो गदया प्रातरभ्य, 3 बजे तक भगवान केशव, मथुरावासी भगवान केशव गदा लेकर के मेरा रक्षा करें। गोविंद आसंग आत्तवेणु, और भगवान गोविंद 3 बजे 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय वेणु बजा करके हमारा रक्षा करें। आप लोगों में से कितने लोग रेडियो सुने होंगे? हाथ उठाओ तो। रेडियो अभी नहीं, पहले बीबीसी लंदन सुनते हो कभी कभी? सुबह सुबह 4 बजे उठाओ लगाओगे तो क्या उसमें रहेगा? वेणु बजता है ना, बांसुरी वादन, वो एक आवाज आता है ना, बड़ा सुमधुर आवाज आता है, या तो वेणु का होता है या नहीं तो कभी कभी सनाई होती है, मोस्टली वेणु का ही होता है। तो मतलब आजकल पता नहीं क्या बजाते हैं, लेकिन हम आज 30 साल 35 साल 38 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसमें बीबीसी खोलो या चाहे ऑल इंडिया रेडियो खोलो तो उसमें बांसुरी सुबह बजता था। जब मैं पहले बार यह पढ़ा था तो मुझे वो तुरंत याद आया था कि पहले लोग कितने संस्कारी थे, कम से कम भागवत का एक बात तो मानते थे। सुबह सुबह 3 से 6 बजे के समय में रेडियो स्टेशन खुलने से पहले बांसुरी बजती थी। ये जगाने का काम है बांसुरी का। तो गोविंद आसंग आत्तवेणु, भगवान गोविंद 3 से 6 बजे तक यानी सूर्यास्त समय तक वेणु बजा करके हम लोगों का रक्षा करे। वाह क्या सुंदर बात है। गदा से रक्षा तो समझ सकते हैं, लेकिन वेणु से भगवान रक्षा करें। भगवान कृष्ण के वेणु में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर वर्णन किए हैं कि जो मथुरा में निवास करते हैं वे भगवान केशव रक्षा करें। देखिए केशव भगवान चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को 2400 अवतारों का वर्णन किए हैं। भगवान के जितने रूप हैं उनका अलग अलग पहचान है। केशव के हाथ में ऊपर गदा होता है और कमल होता है, और नीचे शंख और तलवार, चक्र, शंख और चक्र। ऊपर गदा होता है और कमल होता है, ये दो के लिए, असुरों के लिए और भक्तों के लिए। अब चैतन्य चरितामृत पढ़ना तो मेरे पास, मैं सोचा था तैयार करूंगा उससे कि बिल्कुल सही सही जो गणना है। इसका एक फॉर्मूला है, मैं भूल रहा हूं पल पर समय, कि किसके हाथ में यदि मान लीजिए शंख और गदा ऊपर रहे, शंख और पद्म ऊपर रहेगा तो वो कौन भगवान है, यदि गदा और चक्र ऊपर है तो भगवान विष्णु है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पहचान है। तो यहां पर केशव का पहचान है कि ऊपर के हाथ में गदा है और कमल है। मां केशव गदया प्रातरभ्यात्, भगवान केशव हमारा रक्षा करें प्रातः काल में, सॉरी रात्रि के समय 12 से 3 बजे, और 3 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में भगवान गोविंद रक्षा करें बांसुरी बजा करके। वृंदावन बिहारी, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म नहीं है, केवल बांसुरी ही है, बांसुरी से भगवान रक्षा करते हैं। बड़े बड़े लोग भगवान छका दिए बांसुरी से, गोपियां घर द्वार छोड़कर के भाग गई, संन्यास ले लिया तब छोड़कर भाग गई, आ गई। गांवों को भगवान बुलाते थे बांसुरी से, भगवान के बांसुरी में वह शक्ति था। तो ये गोविंद भगवान हमारा रक्षा करें। नारायण प्राण उदात शक्ति, और 6 बजे से 9 बजे भगवान नारायण उदात शक्ति, यानी 6 से 9 बजे का जो सूर्य का रोशनी है विटामिन डी लेकर के आता है, है ना, कहते हैं ना 6 से 9 बजे तक। हाँ मुकुंद माधव प्रभु, 6 से 9 बजे सनशाइन में बैठना चाहिए ना, ये हैव डन रिसर्च राइट। वो लोग बोलते हैं कि 6 से 9 बजे का जो सूर्य का रोशनी होता है विटामिन डी मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है, समथिंग लाइक दैट आई हर्ड समवेयर। एनीवे उदात शक्ति, शक्ति प्रदान करने वाला। शक्ति दो बार प्राप्त होती है, एक जगने पर और एक सोने पर। नेचुरोपैथी के अनुसार 9 बजे से 12 बजे का जो समय है, यदि सो जाते हैं 9 बजे, तो 9 बजे से 12 बजे के समय में हमारा जो थकावट होता है ना, दिन भर परिश्रम किए होते हैं, वो थकावट दूर हो जाती है। और 12 से 3 बजे उदात शक्ति शक्ति प्राप्त होती है। शक्तियां हम बस में करते हैं, प्राप्त करते हैं शक्ति। 12 से 3 बजे रिजुविनेशन होता है नेक्स्ट डे काम करने के लिए। तो यहां तो आ गया शक्ति, अब शक्ति का प्रदर्शन कब होता है? तो 6 से 9 बजे, यानी मंगला आरती, क्लास, गुरु पूजा सब उसी में आ गया। 9 बजे के बाद तो प्रसाद खाओ तब तरह शक्ति मिलता है, लेकिन 9 बजे तक शक्ति रहता है। अब 12 बजे कहते हैं नारायण प्राण उदात शक्ति मध्य दिने, यानी दोपहर में 12 बजे विष्णु अरिंद्र पाणी। इस समय भगवान के एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में गदा है। ये भगवान विष्णु दोपहर में, कहते हैं उसका दोपहर बज गया, सिर पर जब सूर्य आ गए तो बहुत कठिन समय होता है, तो उस समय मध्य दिने दोपहर में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करके और मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार से दोपहर है, उसके बाद 12 से 3 बजे भगवान मधुसूदन रक्षा करेंगे, 3 से 6 बजे माधव रक्षा करेंगे, उसके बाद में 6 से 9 बजे इसी केस रक्षा करेंगे, बाद में पद्मनाभ रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से इन दो श्लोकों में ये 24 घंटे का वर्णन दे दिया गया है कि कैसे ये लोग रक्षा करेंगे। ठीक है, अब आगे का श्लोक जो है श्लोक संख्या 21 से श्लोक संख्या 30 में कोई परपट नहीं है, तो इस कथा को अच्छा तरह से करना चाहिए कि हम भागवत सुन रहे हैं, हम कुछ बहुत कुछ बात इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस समय तो लें कि नारायण का वो चाहे क्या। वास्तव में होना चाहिए एक एक चीज, पेपर पेन होना चाहिए, आप लिखते जाओ कौन भगवान कब रक्षा करें, किस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये सब हमें समझ लेना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, अब जो बताए कि डिट्यूरशिप में नारद जी को हम मदद मांग रहे हैं, तो
नारद पंचरात्र है ना, कि डिट्यूरशिप में कुछ कमियां हो जाए तो नारद जी से प्रार्थना करना चाहिए। वो भी भगवान के सत्यावेशा अवतार हैं, वो भी अवतार हैं भगवान के, भगवान नारद, वो नारद पंचरात्र के द्वारा हम लोगों को बुद्धि देते हैं, तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कोई अपराध हो जाए तो। माइक माइक।
हरे कृष्ण। ये नारायण कवच है प्रभु जी, तो आजकल जो राक्षस लोग जैसे होते हैं, मर्डर करते हैं, बहुत से गलत काम करते हैं, अगर वो भी नारायण कवच पढ़ के वो भी भगवान उनको मुक्त कर देते हैं क्या?
नारायण कवच रक्षा के लिए है, ये रक्षा का मंत्र है। सबसे बेस्ट मंत्र है वह है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और जो हरि का नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। पापी से पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धारी लो, उद्धार हो जाएगा। लेकिन यदि शुद्ध नाम करे तब उद्धार हो जाएगा, पापी से पापियों का उद्धार हो सकता है हरि नाम के द्वारा। कवच जरूर रक्षा करेगा, ऐसा बात नहीं है, रक्षा करेगा, लेकिन हमें ऐसा कि कवच पढ़ने के बाद फिर वो पाप नहीं करेगा, शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्धि का मंत्र है। और कोई प्रश्न? माइक माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी,
हरे कृष्ण
प्रभु जी। भगवान ने हमारी रक्षा का तो सब कुछ
क्या,
भगवान ने ये जितने भी रक्षा के स्तोत्र बताए हैं उससे तो हमारी रक्षा तो हो जाएगी। कभी कभी भगवान को भी मंदिरों से उठा लिया जाता है, भगवान अपनी रक्षा कैसे करेंगे?
भगवान को रक्षा की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग समझ नहीं पाते हैं और ये हमारा ना समझ है। भगवान अपना रक्षा करने में समर्थ है। जो संसार का रक्षा करता है क्या अपना रक्षा नहीं कर सकता है? भगवान रक्षा कर सकते हैं। कई एक बार जैसे गोविंददेव, गोपीनाथ, मदन मोहन वृंदावन में पूजित थे, वहां पर जब औरंगजेब का अत्याचार हुआ तो भगवान ने स्वप्न दिया जयपुर के महाराजा को और वे वहां से लेकर के आए। तो भगवान अपना रक्षा विभिन्न प्रकार से करते हैं, कभी कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी कभी भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहां रहते ही नहीं है। हिरण्यकश्यपु के सामने भगवान कभी आते कभी चले जाते थे, कंस के सामने भी। पहले के लोग रावण वगैरह अंतर्ध्यान होने का विद्या भी जानते थे, आजकल के असुर तो मच्छर के समान है, तुरंत चले जाएंगे। तो उन भगवान को अपना भगवान रक्षित हैं सब प्रकार से। जो सबका रक्षा करता है उसका क्या कोई रक्षा कर सकता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम लोग भगवान को यहां पर बुलाए हैं, वो हमारे अतिथि हैं। तो हम लोगों का धर्म बनता है कि उन पर किसी प्रकार का कोई प्रताड़ना ना, उन पर होता नहीं है लेकिन कोई कर ना पाए, ये हमारा धर्म है। वो हमारे अतिथि, हम बुलाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं, तो उनका रक्षा करना हमारा धर्म हो जाता है। भले प्राण चला जाए लेकिन रक्षा भगवान काम करे। यदि भगवान को भक्त छोड़कर भाग जाता है तो भगवान कहते हैं नकली भगत है, तो भगवान अपना रक्षा कर लेते हैं। लेकिन भगवान अपना भक्त अपना प्राण गंवाता है भगवान रक्षा करने के लिए, तो भगवान भक्त का रक्षा, भक्ति का रक्षा और सबका रक्षा करते हैं। ऑल राइट, सो वील स्टॉप हियर। ठीक है, ग्रंथराश्रवण भागवतम की जाय, शील प्रभुपाद की जाय।